कल्पना कीजिए, एक 17 साल का लड़का जिसे मतलब उसके ही सगे भाई जिनके साथ वो पला बढ़ा है, वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर एक गहरे सूखे गड्ढे में फेंक देते हैं।
बहुत ही खौफनाक।
बिल्कुल। और वो वहां से उन्हें पुकारता रहता है, लेकिन वे उसे एक अनजान देश के व्यापारियों को गुलाम बनाकर बेच देते हैं। मतलब रातों रात उस लड़के की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है।
Right.
उसका घर, उसकी आजादी, उसकी पहचान, सब कुछ छिन जाता है।
Right.
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी का अंत नहीं है। वही लड़का उसी अनजान देश में तमाम साजिशों और सालों की जेल काटने के बाद एक दिन उस पूरी सभ्यता का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है।
हाँ, दूसरा सबसे ताकतवर इंसान।
तो आज हम डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के जेनेसिस पर किए गए शोध पर चर्चा कर रहे हैं, विशेष रूप से अध्याय 39 से 41 तक, जहां जोसेफ के मिस्र में बिताए गए जीवन का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण किया गया है।
बिल्कुल। और ये जो हमारा आज का डीप डाइव है, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना को दोहराने के लिए नहीं है।
हाँ,
ये इस बात का एक बहुत गहरा अध्ययन है कि कैसे इंसान के नैतिक फैसले और जो एक बृहद ईश्वरीय योजना होती है वो एक साथ काम करते हैं। मतलब ये गड्ढे से लेकर महल तक का सफर असल में कैसे तय हुआ।
एग्जैक्टली। तो अगर हम इसे डॉक्टर मैथ्यूज के नजरिए से देखें तो ये कोई आम गरीबी से अमीरी तक पहुंचने की कहानी नहीं है।
एकदम सही कह रही हैं आप। साहित्य और इतिहास के नजरिए से अगर हम देखें तो ये बहुत जटिल है। ये एक तरह की मास्टर क्लास है।
किस चीज की मास्टर क्लास?
इस बात की कि जब कोई व्यक्ति हर तरफ से टूट रहा हो ना, जब परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत हों, तब उसका चरित्र कैसे काम करता है। मैथ्यूज यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाते हैं।
वो क्या?
ये कि ये कहानी केवल जोसेफ की व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है। ये इस बात का एक ढांचा है कि कैसे एक व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, मतलब जिसे हम इंटेग्रिटी कहते हैं, वो अंततः एक पूरे राष्ट्र और दुनिया के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है।
हाँ, इंटेग्रिटी। और इस कहानी की संरचना में जो सबसे पहली चीज मेरा ध्यान खींचती है वो ये है कि भारी दबाव के बीच अलग अलग लोग कैसे फैसले लेते हैं।
बहुत सही पॉइंट है।
मतलब लेखक ने सिर्फ जोसेफ की महानता को नहीं दर्शाया है, उसने परिवार के बाकी लोगों के फैसलों की भी तुलना की है। मैं श्रोताओं को एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी।
हाँ, बिल्कुल बताइए।
अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि जो मेन हीरो होता है वो मुश्किलों से डटकर लड़ता है, सीना तानकर खड़ा रहता है।
राइट, वो टिपिकल हीरो वाली इमेज।
एग्जैक्टली। लेकिन असल जिंदगी में, खासकर किसी बहुत ही खतरनाक या कह लीजिए टॉक्सिक स्थिति में, वहां से तुरंत भाग जाना कायरता नहीं होती।
हाँ, बल्कि वो सबसे समझदारी वाली रणनीति होती है।
बिल्कुल। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पॉल ने भी अपने शिष्य टिमोथी को यही सलाह दी थी कि कुछ खास तरह के प्रलोभनों से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वहां से दूर भाग जाना चाहिए। और जोसेफ और पोतिफर की पत्नी वाले प्रसंग में जोसेफ ने एकदम यही रणनीति अपनाई।
और ये तुलना कहानी की गहराई को बहुत अच्छे से बाहर लाती है। डॉक्टर मैथ्यूज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि लेखक ने जानबूझकर दो बिल्कुल अलग तरह के नैतिक चरित्रों को एक साथ रखा है।
आप जूदा की बात कर रहे ना?
हाँ। एक तरफ अध्याय 39 में जोसेफ है और ठीक उससे पहले अध्याय 38 में उसका भाई जूदा है, और ये जो बनावट है ये बिना किसी कारण के नहीं है।
तो जूदा वाले अध्याय में ऐसा क्या खास है?
अध्याय 38 में जूदा की कहानी एक अनैतिक पतन का बहुत ही जटिल उदाहरण है। जूदा ने अपने बेटे के मरने के बाद अपनी बहू तामार के साथ जो वादे किए थे वो उसने तोड़ दिए।
और फिर तामार ने वो वेश्या का रूप धारण किया था।
बिल्कुल। और जूदा ने उसे पहचाने बिना उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए, और जब सच्चाई सामने आई तो जूदा को सबके सामने मानना पड़ा कि तामार उससे ज्यादा धर्मी थी।
अरे बाप रे।
हाँ, मतलब ये अध्याय ये दिखाने के लिए रखा गया है कि याकूब के बेटों का नैतिक स्तर उस वक्त कितना गिर चुका था, और ठीक इसी पृष्ठभूमि के खिलाफ अगले ही पन्ने पर जोसेफ की कहानी शुरू होती है।
तो जूदा का प्रसंग ये समझने में मदद करता है कि जोसेफ का अपनी नैतिकता पर टिके रहना कोई आम बात नहीं थी।
बिल्कुल भी नहीं।
मतलब अपने परिवार के उस नैतिक पतन वाले माहौल में वो एक बहुत बड़ा अपवाद था। सोचिए, जोसेफ एक गुलाम के रूप में पोतीफर के घर में है, पोतीफर जो फिरौन का एक बहुत बड़ा अधिकारी है।
हाँ, बहुत ऊंचे पद पर था।
और जोसेफ अपनी मेहनत से पोतीफर का भरोसा जीतता है और पोतीफर उसे अपने पूरे घर का मुखिया बना देता है। लेकिन फिर पोतीफर की पत्नी जोसेफ को अनैतिक संबंध बनाने के लिए उकसाती है।
और यहाँ स्रोत एक बात साफ करता है कि कोई एक दिन की घटना नहीं थी।
राइट। वो क्रॉनिक दबाव था।
बिल्कुल।
वो उसे हर दिन परेशान कर रही थी।
एग्जैक्टली।
और यहीं पर जोसेफ का चरित्र जूदा से पूरी तरह अलग दिखता है। जोसेफ ने उस प्रलोभन का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि इसके पीछे का एक बहुत स्पष्ट तर्क भी दिया।
उसने कहा था ना कि वो अपने मालिक पोतीफर के भरोसे को किसी कीमत पर नहीं तोड़ सकता। हाँ, उसने ये कहा। लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज यहां ध्यान दिलाते हैं कि जोसेफ का जो असली तर्क था वो सामाजिक नहीं बल्कि ईश्वरीय था। जोसेफ ने इसे सीधे तौर पर ईश्वर के खिलाफ एक भयंकर पाप माना।
ईश्वर के खिलाफ पाप।
हाँ, और जब उस स्त्री ने शारीरिक रूप से उसके कपड़े पकड़ लिए तो जोसेफ ने वहां कोई बहस नहीं की। वो अपना बाहरी कपड़ा वहीं छोड़कर भाग निकला।
उसने खुद को उस टॉक्सिक स्थिति से पूरी तरह अलग कर लिया।
बिल्कुल। और मैथ्यूज यहां एक और ऐतिहासिक तुलना करते हैं। इब्राहिम, जो जोसेफ के परदादा थे, जब वे अकाल के समय मिस्र गए थे तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी सारा के बारे में झूठ बोला था कि वो उनकी बहन है।
ओहो, हाँ।
तो इब्राहिम का वो कदम एक तरह से दबाव में टूट जाने का प्रतीक था। लेकिन पीढ़ियों बाद उसी मिस्र में जोसेफ ने एक अलग रास्ता चुना। उसने दबाव में अपनी नैतिकता से समझौता नहीं किया।
मतलब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही परिवार की अलग अलग पीढ़ियां मिस्र में दबाव का सामना करती हैं।
बिल्कुल।
खैर, अब इस पूरी घटना में एक भौतिक वस्तु है जिसका जिक्र स्त्रोत में बार बार हुआ है, और वो है जोसेफ के कपड़े।
कपड़ों का प्रतीकवाद, ये बहुत ही कलात्मक है।
मतलब अगर हम इसे आज की किसी वीडियो गेम से जोड़कर देखें तो ये उस सिचुएशन जैसा है जहां मेन कैरेक्टर बहुत सारी शक्तियों और एक शानदार कवच के साथ ऊंचे लेवल पर शुरुआत करता है।
हाँ, गेमिंग वाला एनालॉजी बहुत सही है यहाँ।
लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है, उसका सारा कवच शक्तियां छिन जाती हैं और वो बिल्कुल शून्य पर, सबसे निचले लेवल पर आ गिरता है।
एग्जैक्टली।
और जोसेफ के साथ तो ये बार बार हो रहा था। हर बार जब उसकी स्थिति बदलती है उसके कपड़े छिन जाते हैं। तो डॉक्टर मैथ्यूज इस कपड़ों वाले प्रतीकवाद की क्या वजह बताते हैं?
प्राचीन साहित्यों में और विशेष रूप से प्राचीन मध्य पूर्व की संस्कृतियों में ना, कपड़े केवल शरीर ढकने की चीज नहीं होते थे।
तो फिर क्या होते थे?
मैं किसी व्यक्ति की पहचान, उसके अधिकार और समाज में उसके दर्जे का प्रतीक होते थे।
जी।
मैथ्यूज बताते हैं कि स्रोत एक पतन की पूरी श्रृंखला दिखाता है, मतलब एक डिसेंट।
हाँ।
और इस पतन को कपड़ों के छीनने के माध्यम से ही दर्ज किया गया है। सबसे पहले जोसेफ के पिता ने उसे एक खास रंग बिरंगा लंबा कोट दिया था
जो परिवार में उसके लाडले होने का प्रतीक था।
बिल्कुल। तो जब भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका तो सबसे पहले वो कोट छीना। ये आजाद बेटे से गुलाम बनने का पहला पतन था। और फिर पोतीफर के घर में,
हाँ,
वहां जब वो एक सम्मानित प्रबंधक बन चुका था तो पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाते समय उसका लबादा छीन लिया। ये दूसरा पतन था
जहां वो एक प्रबंधक से अपराधी बन गया।
राइट। और इसके बाद उसे राजा की जेल के उस तहखाने में डाल दिया गया जहां उसे कैदियों वाले कपड़े पहने पड़े।
बापरे, ये तो बहुत ही भयावह मानसिक स्थिति रही होगी। हर बार जब वो खुद को थोड़ा स्थापित करता उसकी पहचान को फिर से छीन लिया जाता।
हाँ, बार बार जीरो पर आ जाना।
कनान से मिस्र, फिर घर से गड्ढा, और फिर प्रबंधक से सीधा काल कोठरी। मतलब ये तो पूरी तरह से अंधकार में धकेले जाने का प्रोसेस है।
निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ मैथ्यूज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं जो इस पाठ का केंद्र है। दुनिया की नजरों में और भौतिक रूप से जोसेफ लगातार नीचे गिर रहा था।
हाँ।
लेकिन इस पूरे गिरावट के दौरान पाठ बार बार एक वाक्य को दोहराता है, ईश्वर जोसेफ के साथ था।
अरे वाह।
ये स्ट्रक्चर ये बताने के लिए रचा गया है कि बाहरी पतन का मतलब अंदरूनी या आध्यात्मिक पतन नहीं है। जोसेफ चाहे घर में हो या जेल में, जहां भी वो गया उसके काम में समृद्धि आई।
मतलब स्रोत ये स्थापित करता है कि सबसे निचले स्तर पर जहां व्यक्ति बिल्कुल असहाय होता है वहां भी एक वृहद योजना काम कर रही होती है।
एग्जैक्टली।
ये विचार कि काल कोठरी में भी वो अकेला नहीं था, ये कहानी को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। खैर, अब कहानी जेल के अंदर पहुंचती है और इस गहरे अंधकार से निकलने का रास्ता भी वहीं से खुलता है जहां से परेशानियां शुरू हुई थी।
आप सपनों की बात कर रही है ना? हाँ, सपनों की। लेकिन प्राचीन दुनिया में सपनों का विज्ञान आज की हमारी मनोवैज्ञानिक समझ से बहुत अलग था, बहुत अलग।
जेल में जोसेफ की मुलाकात फिरौन के दो खास अधिकारियों से होती है। एक कपबेरर जो राजा को मदिरा पिलाता था और एक बेकर। दोनों को सपने आते हैं। जोसेफ अर्थ बताता है कि कपबेरर 3 दिन में बहाल हो जाएगा और बेकर को फांसी दे दी जाएगी।
और वैसा ही हुआ भी?
बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन स्रोत बताता है कि आजाद होने के बाद वो कपबेरर पूरे 2 साल तक जोसेफ को भूल गया। मतलब तर्क के हिसाब से देखें तो क्या ये एक तरह का धोखा नहीं है?
हाँ, इंसान को तो ऐसा ही लगेगा।
जोसेफ उस व्यक्ति से मिन्नतें करता है कि बाहर जाकर मेरी सिफारिश करना, लेकिन उसे बदले में सिर्फ 2 साल का मौन मिलता है।
मनोवैज्ञानिक रूप से ये किसी भी इंसान को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन हमें प्राचीन मिस्र के कॉन्टेक्स्ट में सपनों को समझना होगा।
वो कैसे?
अन्य और देवताओं से बात करने का एक बहुत ही आधिकारिक तरीका थे।
राइट।
जोसेफ यहाँ कोई जादूगर या भविष्यवक्ता नहीं था, उसने स्पष्ट रूप से सपनों की व्याख्या का श्रेय ईश्वर को दिया था। और डॉक्टर मैथ्यूज इस बात का विश्लेषण करते हैं कि ये जो 2 साल का मौन था ना, वो कोई धोखा नहीं था।
तो वो क्या था?
वो उस ईश्वरीय समय चक्र या डिवाइन टाइमिंग का हिस्सा था जिसे कहानी स्थापित करना चाहती है। ये समय जोसेफ के धैर्य को पूरी तरह से पकाने के लिए था।
अच्छा, मतलब अगर कबियरर ने तुरंत सिफारिश कर दी होती तो
शायद जोसेफ एक आजाद गुलाम बनकर मिस्र से वापस अपने पिता के घर चला जाता, और फिर अकाल के समय पूरी दुनिया को बचाने वाली वो वृहद योजना कभी पूरी नहीं हो पाती।
ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही रोचक नजरिया है। मतलब अगर वो जल्दी आजाद हो जाता तो कहानी का जो विशाल मिशन था वो खत्म हो जाता।
बिल्कुल।
और फिर 2 साल बाद खुद फिरौन को सपने आते हैं, और यहाँ भी सपनों का गणित बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, मैथ्यूज इस पर बहुत जोर देते हैं कि इस पूरी कहानी में सपनों का हमेशा जोड़ों में आना, मतलब पेयर्स में आना कोई संयोग नहीं है।
जैसे कप बेयरर और बेकर के 2 सपने।
राइट। और फिर फिरौन के 2 सपने। फिरौन देखता है कि नदी से 7 मोटी और सुंदर गायें निकलती हैं,
जिन्हें 7 कमजोर और भद्दी गायें खा जाती हैं।
एग्जैक्टली। और फिर 7 अच्छे अनाज की बालों को 7 सूखी और झुलसी हुई बालें निगल जाती हैं।
प्राचीन मिस्र के किसी भी ज्ञानी को इसका मतलब समझ नहीं आया,
लेकिन जब जोसेफ को बुलाया गया तो उसने सब साफ कर दिया।
हाँ, उसने बताया कि ये दोनों सपने असल में एक ही है। प्राचीन साहित्यों में जब कोई ईश्वरीय संदेश 2 बार या जोड़े में आता है तो वो इस बात की मोहर होता है कि ये मामला पूरी तरह से तय कर लिया गया है
और इसे टाला नहीं जा सकता।
बिल्कुल। जोसेफ ने बताया कि इसका अर्थ है 7 साल की भारी प्रचुरता और उसके ठीक बाद 7 साल का भयानक अकाल।
अगर हम यहाँ थोड़ा सा टाइम कैलकुलेट करें ना, तो जोसेफ जब गुलाम बना था तब वो 17 साल का था।
और जब वो फिरौन के सामने खड़ा होकर इन सपनों का अर्थ बता रहा है, तब उसकी उम्र 30 साल थी।
हाँ, 13 साल का अंतर।
ये 13 साल का जो लंबा वक्त था जिसमें उसने भयानक आघात, धोखा, गुलामी और जेल झेली, ये असल में एक बहुत ही लंबी तैयारी का समय था।
मतलब ये कोई फिल्म का मोन्टाज तो था नहीं कि एक गाने में 13 साल बीत गए।
हाँ,
ये रोज रोज की एक पीस देने वाली असलियत थी।
बिल्कुल।
और यही वजह है कि जब जोसेफ 30 साल की उम्र में फिरौन के सामने खड़ा होता है तो वो एक पूरी तरह से बदला हुआ और मैच्योर इंसान है।
फिरौन एक ऐसा शासक था जिसे खुद एक देवता माना जाता था।
राइट।
वो जोसेफ से कहता है कि मैंने सुना है तुम सपनों का अर्थ बता सकते हो।
राइट।
लेकिन जोसेफ इतनी लंबी पीड़ा सहने के बाद भी घमंड में नहीं आता।
वो क्या जवाब देता है?
वो बहुत ही शांत स्वर में कहता है, ये मेरे बस में नहीं है, बल्कि ईश्वर फिरौन को वो उत्तर देगा जो वो चाहता है।
अरे वाह, अपनी इतनी बड़ी क्षमता के बावजूद सफलता का पूरा श्रेय एक उच्च सत्ता को देना, ये जोसेफ के चरित्र की सबसे बड़ी जीत थी।
और सपनों की इसी सटीक व्याख्या और अकाल से निपटने की उसकी रणनीति ने जोसेफ की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया।
बिल्कुल बदल दिया।
जोसेफ सीधा दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के सिंहासन के बगल में पहुंच गया। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि सफलता कभी कभी ना एक बहुत ही आकर्षक मुखौटे की तरह होती है।
एक मुखौटा? कैसे?
मतलब एक ऐसा मुखौटा जो इंसान को इतना बदल देता है कि वो अपने अतीत के दर्द, अपनी पुरानी पहचान और अपनी असली जड़ों को ही भूल जाना चाहता है। जेल के अंधकार से महल की चकाचौंध तक पहुंचने में क्या ये सफलता अपने साथ कुछ छिपे हुए खतरे नहीं लाई थी?
डॉक्टर मैथ्यूज इस बात पर बहुत ही गहरा विश्लेषण करते हैं। जब हम जोसेफ की इस उठान को देखते हैं जिसे एसेंट कहते हैं, तो वो पूरी तरह से मिस्री संस्कृति में रंगता हुआ दिखाई देता है।
हाँ, फिरौन ने उसे पूरे मिस्र का प्रशासक बना दिया था।
और यहाँ हम कपड़ों के प्रतीकवाद को एक बार फिर से उभरता हुआ देखते हैं, लेकिन इस बार ये पतन का नहीं, उठान का प्रतीक है।
जोसेफ के जेल के कपड़े उतार लिए गए होंगे?
बिल्कुल। और उसे मिस्र के सबसे बढ़िया मलमल के कपड़े पहनाएंगे। उसके गले में सोने की जंजीर डाली गई और फिरौन ने उसे अपनी शाही अंगूठी दे दी जो सत्ता का प्रतीक थी।
बापरे, ये तो एकदम मेकओवर हो गया।
हाँ, और उसे एक बिल्कुल नया मिस्री नाम दिया गया, ज़फ़ेनात पाने, और उसे मिस्र के एक बहुत बड़े पुजारी की बेटी असेनात से विवाह कराया गया।
तो ये केवल एक प्रमोशन नहीं था, ये एक पूरी तरह से नया अवतार था। मतलब बाहर से देखकर अब कोई नहीं कह सकता था कि ये कनान से आया हुआ कोई हिब्रू गुलाम है।
राइट। वो सिर से पैर तक मिस्र के कुलीन वर्ग का हिस्सा बन चुका था। और ठीक यही वो जोखिम है जिसे डॉक्टर मैथ्यूज रेखांकित करते हैं। सफलता और इस नई संस्कृति में पूरी तरह ढल जाने का ये दौर जोसेफ के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जोखिम था।
ये कैसे पता चलता है स्रोत से?
ये तब और साफ होता है जब जोसेफ के दो बेटे पैदा होते हैं। जोसेफ ने उनके नाम रखे मनुष्य, जिसका अर्थ है भूल जाना।
अच्छा।
ये कहते हुए कि ईश्वर ने मुझे मेरी सारी परेशानियां और मेरे पिता का सारा घर भुला दिया है। और दूसरे बेटे का नाम रखा इफ्रेम, जिसका अर्थ है दुगुना फलदाई, क्योंकि वो उस देश में फलदाई हुआ था जहां उसने इतना दुख झेला था।
यार ये बहुत ही मानवीय प्रतिक्रिया है। मतलब कोई भी इंसान जो इतने गहरे ट्रॉमा से गुजरा हो, वो उसे भूलकर एक नई और सुरक्षित जिंदगी में खो जाना ही चाहेगा।
बिल्कुल, कोई भी यही करेगा।
लेकिन यहाँ पिता के घर को भूल जाना एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह लगता है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जो परिवार था, जिसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व था, क्या जोसेफ उस पूरी विरासत को मिस्र की इस नई चकाचौंध में हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता था?
ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक अवस्था थी। जोसेफ अपने ट्रॉमा को पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन जिस वृहद योजना की बात हमने शुरू में की थी, वो जोसेफ को उसका अतीत भूलने नहीं देने वाली थी,
क्योंकि अकाल पड़ा।
एग्जैक्टली।
अकाल पड़ा और जोसेफ के बनाए हुए अनाज के भंडार पूरी दुनिया के काम आए।
और इसी अकाल के कारण कनान से जोसेफ के वही भाई अनाज की तलाश में मिस्र आए,
जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंका था।
बिल्कुल। और जो सपना उसने 17 साल की उम्र में देखा था कि उसके भाई उसके सामने झुकेंगे,
जी,
वो अब उस महल में सच हो रहा था।
क्या बात है।
डॉक्टर मैथ्यूज इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और धार्मिक कैनवस पर रखते हैं।
जी।
जोसेफ ने यहाँ जो किया,
जी,
मतलब पूरे मिस्र और दुनिया को अकाल और मौत से बचाना, ये केवल एक कुशल प्रशासन नहीं था।
तो और क्या था?
हजारों साल बाद न्यू टेस्टामेंट के लेखकों ने जब इस घटना को मुड़कर देखा,
जी,
तो उन्होंने इसे एक बहुत बड़े आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में पहचाना।
स्रोत इसकी तुलना 1 जॉन अध्याय 4 श्लोक 14 से करता है,
जहाँ यीशु मसीह को दुनिया का उद्धारकर्ता बताया गया है। राइट। बिल्कुल। डॉक्टर मैथ्यू समझाते हैं कि शुरुआती ईसाइयों ने जोसेफ की इस कहानी को एक रूपरेखा या एक आर्केटाइप के रूप में देखा। जिस तरह से जोसेफ ने कष्ट सहे, उसे उसके अपनों ने ही खारिज कर दिया,
लेकिन अंत में वही पूरी दुनिया को बचाने वाला बन गया।
एग्जैक्टली। वो आगे चलकर आने वाले एक मसीहा का पूर्व चित्रण बन गया। जोसेफ के उस अनाज बांटने वाले काम ने ही इब्राहिम के उस परिवार को भुखमरी से बचाया, जिससे आगे चलकर वो पूरा राष्ट्र बनने वाला था।
वाओ, ये वाकई में बहुत गहरा विचार है कि कैसे इतिहास की एक घटना हजारों साल बाद किसी दूसरी बड़ी घटना का ब्लूप्रिंट बन जाती है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जब हम सफलता की बात करते हैं, तो वो केवल तेज दिमाग, रणनीति या सिर्फ किस्मत का नतीजा नहीं होती।
हाँ, वो भारी दबाव और विपरीत परिस्थितियों में अपनी सत्य निष्ठा को बनाए रखने का नतीजा होती है।
राइट। जब सब कुछ छिन रहा हो तब भी अपने उसूलों पर अडिग रहना, और जब सब कुछ मिल जाए तब भी उस सफलता का पूरा श्रेय सही जगह देना, यही इस पूरी कहानी का असली सार है।
और ये आज के समय में भी उतना ही लागू होता है।
बिल्कुल। आज के दौर की बात करें, जहां चारों तरफ इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, हर इंसान अपने करियर या जिंदगी में किसी न किसी भारी तनाव या दबाव से गुजर रहा है, ऐसे में जोसेफ की तरह सोचना बहुत जरूरी हो जाता है।
सही कहा।
जब परिस्थितियां बहुत टॉक्सिक हो जाएं तो वहां से खुद को दूर कर लेना, जब जीवन अंधकार में लगे तो धैर्य रखकर स्थितियों को समझना और अपने सही समय का इंतजार करना।
हाँ, और देखिए, जोसेफ ने जेल में रहते हुए भी अपना काम नहीं छोड़ा। उसने दूसरों के सपने सुने, उनकी मदद की, भले ही वे उसे भूल ले।
एग्जैक्टली।
और श्रोताओं को यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में आने वाले पतन, वे क्षण जब लगता है कि सब कुछ छिन गया, वे कभी भी फाइनल नहीं होते। पाठ यह दिखाता है कि अगर व्यक्ति अपनी नैतिकता पर टिका हुआ है, तो वो पतन असल में एक बहुत बड़ी तैयारी का हिस्सा हो सकता है।
जोसेफ के कपड़े हर बार छीने गए, लेकिन उसका जो अंदरूनी चरित्र था, वो उन बाहरी कपड़ों से कहीं ज्यादा मजबूत था।
जेल की कालकोठरी हो या फिरौन का शानदार महल, कपड़े और पद जरूर बदले, लेकिन इंसान अंदर से वही रहा।
बिल्कुल वही रहा।
तो इस बेहद दिलचस्प और गहरी चर्चा को हम एक विचार के साथ खत्म करते हैं, जो हम सबको कहानी के एक बिल्कुल नए आयाम पर सोचने के लिए छोड़ देता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि जिंदगी के सबसे बुरे दौर, वे अंधेरे गड्ढे और संघर्ष के दिन, हमें किसी बहुत बड़े मुकाम के लिए तैयार करते हैं। वे हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं।
राइट।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब एक लंबी और दर्दनाक जिद्दोजहद के बाद अंततः वो बड़ी सफलता मिल जाती है, मेरा मतलब है जब वो सफलता सामने होती है, जब एक नई दुनिया हमें पूरी तरह अपना लेती है, एक नया रुतबा, नई पहचान और सफलता के नए कपड़े पहना देती है, तो क्या इंसान अपनी असल जड़ों को जिंदा रख पाता है?
एग्जैक्टली. क्या वो अपनी असली पहचान को जिंदा रख पाता है, या फिर सफलता की उस नई चकाचौंध में, उस नए मुखौटे के पीछे वो हमेशा के लिए अपनी पुरानी पहचान को भूल जाना ही बेहतर समझता है?
ये बहुत ही गहरा सवाल है.
उन गहरे गड्ढों को भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन ये याद रखना कि उन गड्ढों से बाहर निकलने का रास्ता कैसे बना था, शायद सबसे बड़ी चुनौती है. तो इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यही समाप्त करते हैं. सुनते रहिए.